पृष्ठ संख्या 116 अध्याय 8 शाक्त धर्म। शक्ति की आराधना भारतीय परंपरा में अति प्राचीन है। यह प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में तथा सभी भागों में विकसित रही है। सिंधु घाटी से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों से ज्ञात होता है कि उस समय इसका स्वरूप अत्यंत विकसित था। द्रविड़ों में भी सब देवी उपासना का प्रचलन था। साहित्यिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि आर्य भी शक्ति की पूजा करते थे। पीछे चलकर ये सभी मान्यताएं रुद्र में समाहित होकर आदि शक्ति के रूप में विकसित हुई और यह स्वीकार किया जाने लगा कि सृष्टि के उदय का यही कारण है। इसी भावना को भारतीय दर्शन में भी समाहित कर लिया गया। सांख्य दर्शन में प्रकृति की अवधारणा इसी आधार पर आधारित है। आज भी अनेक रूपों में इसी केंद्रीय भावना को लेकर प्रायः सभी सभ्य और असभ्य तथा अर्ध सभ्य जातियां शक्ति की उपासना विभिन्न प्रकारों से करती हैं। आदि से ईसा पूर्व काल तक हड़प्पा संस्कृति में अनेक मुहरों पर नारी मूर्तियां विविध प्रकार की मिली हैं। बहुतायत से यहां नारियों की मृड मूर्तियां भी मिली हैं, जो बनावट में सामान्य नारी आकृतियों से भिन्न हैं तथा विविध रूपों की हैं। पत्थर के योनि प्रकार के टुकड़े जो गोल हैं तथा बीच में जिनके छिद्र हैं, इसी भावना को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ शक्ति की उपासना उत्पादन के लिए की जाती थी, ऐसा कुछ मुहरों की आकृतियों से ज्ञात होता है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के पुरातात्विक उत्खनन से अधिक संख्या में नारी की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों में नारियां प्रायः नग्न रूप में प्रदर्शित की गई हैं तथा उनके कमर में पटका और मेखला तथा गले में गुला बंद अथवा हार प्रदर्शित है। सिर पर कुल्हाड़ी की आकृतियां सी कोई वस्तु भी प्रदर्शित है। ऐसी मूर्तियों के विषय में अधिकांश विद्वानों का मत है कि ये मातृ देवी की मूर्तियां हैं। प्राचीन संसार में मातृदेवी की उपासना बड़ी लोकप्रिय थी तथा इनकी मूर्तियां प्राचीन एशिया, माइनर, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, क्रीट, साइरस, मिस्र आदि देशों में भी प्राप्त हुई हैं। वैदिक भारत में भी मातृदेवी माता पृथ्वी अदिति नामों से विख्यात थी। सैंधव सभ्यता में मातृदेवी की उपासना का विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है, जो विभिन्न प्रकार की मूर्तियों से प्रमाणित होती है। नारी की कुछ ऐसी मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं, जो शिशु को स्तनपान करा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जननी का दैवीकरण है। सैंधव कालीन मातृदेवी मानव लोक को लोक की पोषिका पालिका जननी मानी जाती थी। अन्य समकालीन सभ्यताओं की मातृदेवी की मूर्तियों से तुलना करने पर यह प्रमाणित होता है कि सैंधव कालीन मातृदेवी संपूर्ण वानस्पतिक जगत की भी देवी थी। एक मूर्ति में एक नारी के गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। यह मूर्ति वानस्पतिक जगत की सृष्टि कारिणी देवी की दैवीकरण का प्रमाण है। मैके को यहाँ से एक मुद्रा प्राप्त हुई है, जिसमें एक वृक्ष के नीचे एक नारी अंकित है। यह चित्र वनस्पति जगत की अधीश्वरी का ही प्रतीक रहा होगा। ऐसी कल्पना प्राचीन क्रीट एवं बाबुलोन आदि देशों में भी की गई थी। सैंधव कालीन मातृदेवी न केवल मानवीय जगत एवं वानस्पतिक जगत की ही सृष्टिकारिणी अधीश्वरी थी, वरन पार्श्विक जगत की भी देवी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृदेवी की एक मूर्ति में अनेक शीश पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा हुआ प्रदर्शित है। मातृदेवी के कुछ चित्र पशुओं के साथ भी प्राप्त हुए हैं। इससे मातृदेवी के पशु पक्षी की अधीश्वरी रूप का परिचय एवं प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि सृष्टि की आदि शक्ति सैंधव काल में मातृदेवी के रूप में पूजित थी तथा शक्ति की उपासना मातृदेवी के रूप में अनादि काल से प्रचलित थी, जिसमें उसे मानवीय जगत के साथ साथ वनस्पति एवं पार्श्विक जगत की सृष्टिकारिणी एवं अधीश्वरी देवी के रूप में स्वीकार किया गया था। नारी तत्व की भी उपासना सैंधव काल में प्रचलित थी। परम नारी पुरुष के युग्म की उपासना के साथ साथ सिंधु निवासियों ने लिंग और योनि की प्रतीकात्मक उपासना, ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति की उपासना, मातृ देवी की उपासना, शक्ति की उपासना का एक रूप है। सृष्टि की शक्ति की उपासना का प्रारंभ उसके आधार पर सैंधव कालीन प्रमाणित होती है, जिसे डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत में स्वीकार किया है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर पर अंकित आकृति में एक नंगी स्त्री चित्रित है, जिसके पैर ऊपर की ओर उठे तथा फैले हैं। उसके उदर में एक लता निकल रही है। यहाँ लता का निकलना उत्पादन के साथ दैवी संबंध को व्यक्त करता है। इसकी समता ऋग्वैदिक अदिति से की जा सकती है, जिसे पृथ्वी या भू माना जाता है। इसी मुहर के पृष्ठ भाग पर एक पुरुष हाथ में छुरा लिए अंकित है, जिसके सम्मुख एक औरत आत्मसमर्पण की स्थिति में हाथ ऊपर उठाए बैठी है। यह संभवतः बलि का द्योतक है। आज भी देवी पूजा में बलि की व्यवस्था है, उसी का यह प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। दूसरी मुहर पर एक पीपल का पेड़ दो तनाव वाला है। एक औरत दोनों तनाव के बीच में खड़ी है तथा अपने हाथों से उनको कसकर दबा रही है। उसके सामने नीचे एक आदमी एक बकरा लेकर खड़ा है तथा उसके पीछे बहुत से लोग खड़े हैं। बकरा बलिदान के लिए संभवतः वहां लाया गया है तथा लोग उसमें भाग लेने के लिए एकत्रित हैं। एक ठिकड़े पर सात औरतें खड़ी हैं। उनके सामने एक बकरा बंधा है। बहुत से लोग बकरे के पीछे ढोल आदि वाद्य बजाते हुए नाचते हैं। लगता है दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा आज किया जाता है उसी का यह अविकसित रूप है। ये सात स्त्रियां सप्त मातृकाएं हैं और बकरा बलि के लिए हैं, जो उनके पूजा में संभवतः चढ़ाया जाता रहा होगा। इस अवसर पर लोग आनंद मना रहे हैं। अनेक स्वतंत्र नारी मृण मूर्तियां भी इस सभ्यता के विभिन्न केंद्रों से प्राप्त हुई हैं। इनमें उनके शरीर का शेष भाग चाहे जैसा भी हो पर उनका स्तन अक्षत है, अविवाहित कन्याओं की तरह एकदम गोल और उठा। ये नंगी मूर्तियां हैं जो विविध अलंकरणों तथा केश विन्यास से सज्जित हैं। ये भी देवी की ही मूर्तियां लगती हैं, जो संभवतः पूजा के लिए बनाई गई होगी। इसलिए विलर ने लिखा है, अलाज नंबर ऑफ द टेराकोटास रिप्रेजेंट फीमेल्स एंड देयर हैज बीन परहैप्स एन एग्जिगरेटेड टेंडेंसी एज रिजार्ट दीज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द ग्रेट मदर गॉडेस फैमिलियर इन द रिलीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड पार्ट ऑफ यूरोप। वैदिक युग में इसने एक नया रूप धारण किया। अनेक देवियों के नाम ऋग्वेद में आए हैं, जैसे उषा, अदिति आदि। उषा को देवा नाम माता कहा गया है। कहीं कहीं उसे स्वर्ग की पुत्री भी कहा गया है। अदिति और दक्ष को संसार का माता पिता माना गया है। किन्हीं प्रसंगों में दक्ष की उत्पत्ति अदिति से तथा अदिति की उत्पत्ति दक्ष से बताई गई है। इससे स्पष्ट है कि अभी शक्ति उपासना व्यापक रूप से समाज में स्थापित नहीं हुई थी, यद्यपि उसका बीजारोपण किसी न किसी रूप में हो चुका था। यद्यपि देवी की प्राचीनता गृहसूत्र कालोपरांत एवं महाभारत काल के पूर्व की है। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैष्णविज्म सिविज्म एंड माइनर रिलीजियन सिस्टम में इसी को प्रमाणित करते हुए निम्न मत व्यक्त किया है। इन द वैदिक लिटरेचर डाउन टू द गृहसूत्रास which we have examined for tracing the development of the idea of Rudra Shiva, no female devotee of predominant power is mentioned. We have such names as Rudrani and Bhavani, which are simply derivatives goddess. Uma, too, is the wife of the god and does not overshadow her male consort. In the MBH Bhishma Puran, however, there is a हाइम एड्रेस टू दुर्गा बाय अर्जुन अंडर द एडवाइस ऑफ कृष्णा इन विच सी इज प्रेड टू फॉर ग्रैंटिंग विक्ट्री इन द फोर्थ कमिंग बैटल. दिस हाइम itself shows that at the time when it was composed and inserted in the poem, Durga has already acquired such an importance that she was adored by men as powerful goddess, able to fulfill their desires. पर यह मान्य नहीं प्रतीत होता क्योंकि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि वैदिक काल में देवी उपासना प्रचलित थी. उत्तर वैदिक काल में यह उपासना और भी अधिक विकसित हुई. वात्सन्यी संहिता में अम्बा को रुद्र की बहन कहा गया है. यहाँ अंबिका के साथ पूजा में दिए गए भाग को उन्हें ग्रहण करने के लिए कहा गया है. इससे दो बातें स्पष्ट होती है कि रुद्र के साथ अंबिका की पूजा होती थी तथा भाई बहन के बीच संभवतः विवाह का चलन अनार्य संस्कृति से देवी उपासना के साथ आर्य संस्कृति में आने लगा था. इसके पीछे यह भी कारण रहा होगा कि सैंधव सभ्यता के लोग अपने गढ़ों के नष्ट होने पर आर्यों के साथ अपने अलग स्वरूप में रहे होंगे. जब वे आर्य संस्कृति में स्वीकार किए गए तो आर्यों ने उनकी देवी पूजा की प्रारंभ को भी अपनी संस्कृति में ग्रहण कर लिया. इसका विकास आगे चलकर तैतरीय आरण्यक में हुआ जहां रुद्र को उमापति कहा गया है तथा अंबिका के साथ उनके विवाह का उल्लेख प्राप्त होता है. इससे स्पष्ट है कि अंबिका और उमा एक ही हैं और रुद्र उनके पति हैं. इनके अतिरिक्त इनके लिए अन्य नाम कात्यायनी, दुर्गा, कराली, काली, सरस्वती, चंड साम माता, वेद माता आदि का भी यहाँ उल्लेख है. वेबर के अनुसार ये सभी शिव की पत्नी के नाम हैं जो विविध दैवीय रूपों के समष्टीकरण की ओर संकेत करते हैं. शिव में जिस प्रकार अग्नि और रुद्र का योग है उसी प्रकार शिव की पत्नी में भी उमा, अंबिका, पार्वती तथा हेमवती जहां रुद्र की पत्नियां हैं वहां काली और कराली अग्नि की. डॉक्टर चट्टोपाध्याय के अनुसार कुछ नाम तो इनमें ऐसे हैं जो स्थानीय देवताओं से संबंधित है जैसे हेमवती. केन उपनिषद में यह ब्रह्मा के साथ संबंधित एक स्वर्गीय देवी हैं जिन्हें शिव की पत्नी के रूप में पीछे स्थान दिया गया. इसी प्रकार उमा की निष्पत्ति का संस्कृत में अभाव देखकर कुछ लोगों ने द्रविड़ शब्द अम्मा से इसकी निष्पत्ति बताया है. द्रविड़ देश में देवी का रूप विद्यमान था क्योंकि कन्याकुमारी के संबंध में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी तथा मेगास्थनीज के इंडिका से विवरण मिलता है. तैतरीय आरण्यक में भी दक्षिण की कुमारी कन्या का संबंध शिव से होना वर्णित है. अग्नि की दो जिह्वाओं का नाम काली और कराली मुंडकोपनिषद में आया है. जैकोबी के अनुसार अग्नि की सातों जिह्वाएं जिनका वर्णन ग्रंथों में हुआ है वे विनाशक और प्रलयकारी राक्षसी रही होंगी जो अपने विनाशक प्रकृति के कारण दुर्गा के साथ जोड़ दी गई होंगी क्योंकि वह भी रक्तपूर्ण बलि के द्वारा पूजित होती हैं. वेबर ने दुर्गा को देवी नीति जो सभी बुराइयों की केंद्र है के साथ जोड़े जाने की बात कहा है. महाकाव्यों में भी विविध देवी रूपों को शिव के साथ जोड़ने का उल्लेख है. महाभारत के अनुसार शिव की ही पत्नी ने क्रोध से एक विकराल रूप धारण कर अपना नाम महाकाली रख लिया. उसी भयानक कृति को अपनी आंखों से देखने के लिए शिव ने अपने मुंह से भद्रकाली उत्पन्न किया. इस प्रकार विविध मातृशक्तियों को समन्वित रूप महान माती देवी के रूप में उन्हें समाहित कर शंकर के साथ जोड़ दिया गया. ज्ञात होता है कि महाभारत कालीन लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुर्गा की आराधना अर्चना करते थे. महाभारत काल में दुर्गा की आराधना कुमारी काली, कपाली, महाकाली, चंडी, कात्यायनी, कराली, विजया, कौशिकी, उमा, कांतार वासिनी आदि नामों से की गई है. महाभारत के विराट पर्व में युधिष्ठिर ने देवी की स्तुति की है. दक्षिण की पांडुलिपियों में यह अंश नहीं है. डॉक्टर भंडारकर का मत है कि संभवतः यह अंश प्रक्षिप्त है क्योंकि इसका विषय प्रायः वैसा ही है जैसा कि हरिवंश के एक ऐसे ही स्थल का है. इस स्तुति में दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी एवं सुरा मांस एवं पशुओं के में अनुरक्त बताया गया है। दुर्गा को यशोदा के गर्भ से जन्म लेना बताया गया है। ऐसा वर्णन है कि कंस ने जब उन्हें दुर्गा को पत्थर पर पटका तब वे स्वर्ग चली गई। वे नारायण की परम प्रिया तथा वासुदेव की भगनी हैं। वे स्थायी रूप से विंध्याचल पर निवास करती हैं। इस काल का कोई भी अभिलेख या सिक्का मातृपूजा का उल्लेख नहीं करता। कुछ पत्थर की तस्तरियां तथा मृण मूर्तियां इस काल की मिली हैं, जिनके द्वारा इस पर किंचित प्रकाश पड़ता है। पत्थर की तस्तरियां तक्षशिला, कोसम, भीटा, राजघाट, पटना शहर, मुर्तुजागंज मोहल्ला से प्राप्त हुई हैं, जो ईसा पूर्व की हैं। इन पर चारों ओर मातृ देवियों की आकृतियां बनी हैं तथा लता के तरह की आकृतियां और कुछ अंकन भी साथ में हैं। इससे इन्हें उत्पादन की देवी माना जा सकता है। एलन ने पांचाल राजा भद्रघोष के सिक्के के पूर्वभाग पर कमलासीन देवी की आकृति को भद्रा कहा है, पर डॉक्टर चट्टोपाध्याय ने इसे लक्ष्मी माना ही उचित बताया है। मार्शल ने तक्षशिला से प्राप्त माती देवी की मूर्तियों के आधार पर जो मौर्य कालीन है देवी उपासना का संकेत मौर्य काल में दिया है। इसके पहनावे के आधार पर विदेशी उत्पत्ति का अनुमान इनके विषय में लगाया जा सकता है, पर यह भी संभव है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रचलित माती देवियों का यह प्रभाव रहा हो। एक मृण मूर्ति में पुरुष और स्त्री की युगल मूर्ति से देव देवी का साहचर्य भी उजागर होता है। इससे ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व काल में देवी उपासना हिमालय से कन्याकुमारी तक था तथा पूरब में पटना और आगे भी प्रचलित था। यह दो रूपों में की जाती थी, एक विकराल जिसमें बलि के द्वारा पूजा होती थी तथा दूसरे उत्पादकता, जैसे रामायण में वर्णन है कि सीता का उद्भव खेत जोतते समय हुआ था, जिससे उन्हें धान्य मालिनी कहा गया है। साथ ही देवी मूर्तियों के साथ लता वितान का जोड़ना भी इसी भाव का बोधक है। ईस्वी पूर्व से गुप्त पूर्व काल तक महाभारत के भीष्म पर्व में अर्जुन द्वारा तथा विराट पर्व में युधिष्ठिर द्वारा दुर्गा स्त्रोत का प्रयोग किया गया है, जो चौथी शती के लगभग का है। इसमें देवी का वासस्थान विंध्य प्रदेश तथा प्रसन्न करने का साधन मदिरा मांस एवं बलि बताया गया है। इसका कारण लगता है कि पुलिंद सबर आदि वन्य जातियों में इसका चलन था। इनके द्वारा प्रयोग किए गए जाने वाले मांस मदिरा बलि आदि से इनकी पूजा की जाती थी। विशेष रूप से अर्जुन द्वारा व्यवहारित दुर्गा स्त्रोत में इनके आयुधों की चर्चा है, जो युद्ध के काम में आते थे तथा नंद के परिवार में उत्पन्न होने और विष्णु कोकामुख की बात से भी यही ज्ञात होता है। हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में दुर्गा के जन्म तथा उनके पूजित होने के विषय में वर्णन है। इस पुराण के 32, 36 तथा आगे के श्लोकों में स्पष्टतः ज्ञात होता है कि विष्णु पाताल लोक गए तथा काल रूपिणी निद्रा से यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहे। विष्णु ने कहा कि वे कौशिकी के नाम से अवतरित होंगे तथा विंध्याचल पर स्थायी रूप से निवास करने वाली, शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली एवं पशु बलि से पूजित होने वाली होंगी। इसी पुराण में आया दुर्गा की एक स्तुति उद्धृत की गई है, जिसमें दुर्गा को सुरा और मांस में अनुरक्त सबरों, पुलिंदों, बर्बरों एवं अन्य वन्य जातियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण के रचना काल में दुर्गा प्रचंड तेजवान एवं शक्ति संपन्न देवी के रूप में अधिष्ठित हो चुकी थी। इस पुराण के अध्याय 32 में दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के देवी के रूप में वर्णित किया गया है तथा इन्हें शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव एवं विभिन्न देवों के प्रचंड तेज से उत्पन्न बताया गया है। इसमें दुर्गा को चंडी एवं अंबिका नाम से संबोधित किया गया है। मार्कंडेय पुराण में शुंभ एवं निशुंभ के वध करने वाली देवी की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों से पीड़ित होकर देवगढ़ हिमालय पर्वत पर गए तथा वहां उन्होंने देवी की स्तुति की। उसी समय गंगा में स्नान करने के लिए पार्वती निकली। उस समय पार्वती के शरीर में शिवा, जो अंबिका के नाम से भी जानी जाती थी, निकली और बोली कि शुंभ और निशुंभ से पीड़ित देवगण उनके वध के लिए जिसकी स्तुति कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। चूंकि वह पार्वती के साथ उनके शरीर के कोष से उद्भूत हुई थी इसलिए कौशिकी कहलाई। ऐसा वर्णन है कि जब अंबिका पार्वती के शरीर से निकली तब पार्वती के शरीर का वर्ण कृष्ण हो गया तथा उनका नाम कालिका काले रंग वाली पड़ा। युद्ध के समय जब शुंभ और निशुंभ ने उन पर आक्रमण कर दिया तब क्रोध से उनका ललाट कृष्ण वर्ण का हो गया तथा उनसे नरमुंडों की माला व्याध चर्म एवं हाथ में खटवांग धारण किए हुए कराल मुखी काली निकली। उन्होंने चंड और मुंड नामक दैत्यों का संहार किया तथा लौटकर अंबिका के पास गई। चंड और मुंड दैत्यों के वध करने से अंबिका ने उनका नाम चामुंडा रखा। ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही नारसिंगी एवं ऐन्द्री शक्तियां उनकी विभूति कही गई है। मार्कंडेय पुराण के वर्णन से ज्ञात होता है कि अंत में देवी वैवस्वत मन्वंतर में विंध्यवासिनी देवी का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ का विनाश करेगी। इसके पश्चात अन्य विभिन्न अवसरों पर उनके विभिन्न रूपों को ग्रहण करने का वर्णन है यथा नंदसुता शाकंभरी भीमा भ्रामरी आदि। मार्कंडेय पुराण में विभिन्न नामों से संबोधित की जाने वाली एक ही देवी का वर्णन है परंतु आलोचकों की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक देवी के ही केवल विभिन्न नाम नहीं वरन विभिन्न विभिन्न देवियों की स्थिति के सूचक है जिनकी कल्पना एवं उदय विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों की देन है। डॉक्टर भंडारकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैष्णविज्म शिविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम्स में निम्न मत व्यक्त किया है बट द क्रिटिकल आई विल सी दैट दे आर नॉट मेयरली नेम्स बट इंडिकेट डिफरेंट गॉडेस व्हिच ओड देयर कंसेप्शन टू डिफरेंट हिस्टोरिकल कंडीशन बट हु आर afterward identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus। प्रथमतः हम लोग उमा का वर्णन पाते हैं जो रक्षिका एवं शिव की पत्नी है। इसके पश्चात हेमवती और पार्वती का वर्णन आता है जो उमा के विशेषण हैं। यह उनके पति शिव के पर्वत पर रहने पर पर्वत पर ही उत्पन्न होने के कारण उन्हें प्रदान किया गया है। अगले क्रम में वनों और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवियां वर्णित हैं जो पशुओं और मनुष्यों की बलि द्वारा पूजित हैं तथा सुरा की आहुति उन्हें चढ़ाई जाती है। पुलिंदों सबरों एवं बर्बर जंगली जातियों द्वारा ये पूजित हैं। इनकी प्रकृति उग्र है तथा इन्हें उग्र देवी कहा गया है। ये कराला काली चंडी चामुंडा आदि नामों से संबोधित हैं। डॉक्टर आजी भंडारकर के अनुसार आई मस्ट बी एडमिट हाउएवर दैट द फर्स्ट टू नेम्स केम इन टू यूज व्हेन इन एन अर्ली एज रुद्र वाज आइडेंटिफाइड विथ अग्नि हुज फ्लेम्स विच वेयर कंसीडर्ड हिज टंग्स हैव दोज टू नेम्स एंड फाइव अदर्स Probably the ferocity of the later goddess of those names was due to this identification and not to their being the object of worship to the ferocious barbarous types. In all likelihood, however, both the elements contribute to give that character to Kali, Kerala and Chamunda that an aboriginal elements should have contributed to the formation of Rudra's consort in later times as it did in earlier times toward the formation of Rudra himself as he is represented in the Satarudriya is a matter that might be expected. A third and powerful element in the conception of these goddess is that of Shakti or power. The powers of willing, acting, creating, eluding, etc. were conceived of as goddess as the noun Shakti is of the feminine gender. The seven goddesses named Ado, Brahmi, Maheshwari, etc. owe their origin to this conception of Shakti and the powers of the seven gods. इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इन देवियों की परिकल्पना में प्रबल तत्व शक्ति की भावना है. इच्छा, क्रिया, सर्जन, मोह आदि की शक्तियों की कल्पना देवियों के रूप में की गई, क्योंकि शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है. ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सात देवियों की कल्पना का कारण तत्त्व देवों की शक्तियों की भावना है. काल क्रम में कात्यायनी और कुशिक ब्राह्मणों में कौशिकी का भी उल्लेख है. डॉक्टर आरजी भंडारकर के अनुसार शक्ति की भावना के परिणाम स्वरूप देवी का और भी विकास हुआ. इस प्रकार यह देवी के निम्न स्वरूप स्वीकार करते हैं. एक सौम्य रूप देवी का एक ऐसा रूप है जिसकी पूजा सामान्यतः की जाती है. दो, प्रचंड रूप, यह देवी का ऐसा रूप है जो कापालिक और काला मुखों से संबद्ध है तथा इसमें देवी को पशु बलि एवं नर बलि चढ़ाई जाती है. तीन, काम प्रधान रूप, यह देवी का वह रूप है जिसकी उपासना शाक्त करते हैं. इन उपर्यंकित विवरणों के आधार पर इस काल के शाक्त संप्रदाय के निम्नांकित स्वरूप ज्ञात होते हैं. एक, शाक्त संप्रदाय को वैष्णव और बौद्ध अपने में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील थे पर सफल न हो सके. दो, शैव धर्म के साथ ही शाक्त धर्म अभी भी जुटा था क्योंकि इस समय शैव धर्म की ही प्रधानता थी. तीन, शाक्त धर्म में द्रविड़ तथा अनार्य तत्व समाहित थे जैसे मदिरा, मांस, बलि आदि का इनकी पूजा में प्रयोग होना. चार, इस समय शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र बना विंध्य पर्वत, इसी से आज भी विंध्य पर्वत वासिनी देवी की प्रधानता है. पत्नी के रूप में इसका उल्लेख है जैसे इस काला मुख, इसके दो बातें ज्ञात होती हैं, यह शक्ति स्वरूपा है तभी युद्धास्त्रों का धारण करती हैं, विंध्य पर्वत में वास करती हैं, योद्धाओं के पसंद की चीजों का प्रयोग इनकी पूजा में किया जाता है जैसे मांस, मदिरा आदि. इनका संबंध वैष्णव धर्म से जोड़ने का प्रयास किया गया है तभी नंद और वासुदेव के साथ तथा कोकामुख के प्रयोग द्वारा विष्णु के साथ इनका सानिध्य स्थापित करने का प्रयास दिखता है. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हरिवंश पुराण में कंस और देवकी की कथा से यशोदा के गर्भ से इनके उत्पन्न होने तथा देवकी के पास पहुँचाए जाने, कंस द्वारा मारे जाने, इंद्र के द्वारा देव पद प्रदान करने, विंध्य पर्वत में निवास करने एवं शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों को मारने आदि की क्रिया और पशु बलि द्वारा उपासित किए जाने का उल्लेख वैष्णव परंपरा के साथ शाक्त संप्रदाय को जोड़ने का प्रयास सिद्ध करता है. इनका नाम नारायणी अर्थात नारायण की पत्नी भी मिलता है जो उपर्यंकित मत का एक अत्यंत पुष्ट प्रमाण है. दूसरी ओर महाभारत में देवी का निवास हिमालय की तराई में चैत्य के समीप होने का उल्लेख है. जम्बू कतक चैत्येषु नियम नित्यम सन्निहिताय, जम्बू कतक चैत्येषु नित्यम सन्निहितालये, यहाँ चैत्य शब्द का अभिप्राय बौद्ध चैत्य है से है. इससे स्पष्ट है कि कुषाण काल में इस तरह तो यह सफल नहीं हुआ पर पीछे शाक्त धर्म का प्रभाव बौद्धों तथा ब्राह्मणों पर तांत्रिक संप्रदाय के समय पड़ा. इसी से तारा बौद्ध देवी के रूप में तांत्रिक बौद्ध धर्म में स्वीकार की गई. इस समय भी शिव के साथ शक्ति के संयोग की ही मान्यता थी क्योंकि समाज में शैव धर्म की ही प्रधानता थी. इन उपर्यंकित विवरणों के आधार पर इस काल में शाक्त संप्रदाय का निम्नांकित स्वरूप ज्ञात होता है. एक शाक्त संप्रदाय को वैष्णव और बौद्ध अपने में जोड़ने के लिए प्रयत्नशील थे पर सफल नहीं हो सके। दो शैव धर्म के साथ ही शाक्त धर्म अभी भी जुटा था क्योंकि इस समय शैव धर्म की ही प्रधानता थी। शाक्त धर्म में द्रविड़ तथा अनार्य तत्व समाहित थे जैसे मदिरा मांस बलि आदि का इनकी पूजा में प्रयोग करना। चार इस समय शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र बना विंध्य पर्वत, इसी से आज भी विंध्य पर्वत वासिनी देवी की प्रधानता स्वीकार की जाती है। पांच विंध्य क्षेत्र एवं हिमालय की वन्य जातियां जैसे शबर पुलिंद आदि इस धर्म को मानते थे। छह इनका प्रसार हिमालय मध्य भारत पश्चिमी भारत सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी पूर्वी भारत में था। सात इस संप्रदाय में कट्टरता के स्थान सहिष्णुता आ गई थी, तभी वैष्णवों के साथ शक्ति का संबंध जोड़ा जाने लगा था और बौद्ध भी इसके ऊपर अपना प्रभाव जमाने लगे थे। आठ कुछ विदेशी प्रभाव भी इस पर दिखता है क्योंकि हुविस्क के सिक्कों पर पुरुष और स्त्री आकृतियां अंकित हैं। उनके मुद्रा लेख के अनुसार यह पुरुष ओएसा है और स्त्री नन। कुछ सिक्कों पर स्त्री का नाम ओमा और या उमा लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि दुर्गा के साथ सिंह आदि का सानिध्य विदेशी देवी स्तर नन के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार बाबुलोनिया देवी का समीकरण भारतीय मातृ देवी में किया जाना स्पष्ट होता है। स गुप्त काल और उसके बाद। गुप्त काल में देवी उपासना प्रचलित थी पर इसका व्यापक चलन अभिलेखों से नहीं मिलता। मुख्यतः केवल दो ही अभिलेख देवी विषयक तथ्य पर प्रकाश डालते हैं, विक्रमी संवत 480 के गांधार अभिलेख में विश्ववर्मन के मंत्री मयूराक्ष द्वारा विष्णु तथा देवी के दो अलग अलग मंदिरों में के निर्माण का उल्लेख है। यहाँ मातृ देवियों तथा इनके अनुचरियों डाकिनी डंकिनी शंकिनी से युक्त मंदिर का चर्चा है तथा इस धर्म में जादुई क्रियाओं के द्वारा नाद करने तथा समुद्र में उफान लाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि मातृ देवियों की संख्या अब एक से अधिक हो गई थी। उनके साथ उनकी भयानक सहचारियों को जोड़ा गया था तथा उनके द्वारा जादुई क्रियाओं को करने का उल्लेख है। स्कंद गुप्त के विहार स्तंभ लेख में मातृ देवियों का उल्लेख है। इनकी संख्या भिन्न भिन्न ग्रंथों में 7, 8, 9, 16 आदि दी गई है। इनमें प्रमुख है ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी माहेंद्री वाराही तथा चामुंडा। इन्हें सप्त मातृका कहा जाता है। इस भिन्नता के पीछे कारण है देवों की शक्ति से ही मातृ देवियों की स्थिति। मार्कंडेय पुराण के चंडी महात्म्य में इसे स्वीकार किया गया है। ये सभी शक्तियां वास्तव में परस्पर समाहित है। इसी से मुंडमाला तंत्र में देवियों के 100 नाम गिनाए गए हैं। इनमें से कुछ आर्य उत्पत्ति की है और कुछ द्रविड़। ब्राह्मी माहेश्वरी वैष्णवी आदि नामों से ही ये आर्य देवताओं की शक्तियां प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार माहेंद्री देवराज इंद्र की शक्ति है पर चामुंडा कौमारी आदि दक्षिण भारतीय द्रविड़ परिवार की देवियां हैं जिनकी पूजा आज भी दक्षिण भारत में क्रमशः श्रीशैल मद्रास तथा कन्याकुमारी में होती है। इस समय देवी के सहचारियों में डंकिनी शंकिनी आदि का नाम लिया जाने लगा था। जैसा कि ऊपर के अभिलेखों से स्पष्ट है ये मध्य देशी तत्व हैं जो यहाँ जुड़ी हैं। शंकिनी सको से संबंधित है तथा डंकिनी डगो से, जो क्रमशः शकिस्तान तथा डकिस्तान नामक स्थानों से जुड़ी थी, जो मध्य एशिया के निवासी हैं। नीलतंत्र में देवी की उत्पत्ति का स्थान कोल नामक झील बताया गया है। आज भी पामीर पर्वत मेरु पर्वत के पार सर और आमू नदियों के बीच कोल नामक झील है। इस प्रकार देवी संप्रदाय पर मध्य एशियाई प्रभाव भी पड़ने लगा था। देवी का अस्तित्व दो रूपों में इस समय उभरा, एक विभस तथा दूसरा सौम्य, पर दोनों के प्रति विश्वास की चरमता मिलती है। किंतु अभी तक देवी उपासना बंगाल में नहीं थी। महिषासुरमर्दिनी के रूप में देवी के कल्पनात्मक कथानक देवों की समन्वयात्मक शक्ति का उल्लेख पुराणों में दिया गया है। इससे गहन धार्मिक भावना तथा आस्था जागृत होती है। हर्ष के समय में शाक्त धर्म के कुछ केंद्र स्थापित होने लगे थे। गांधार क्षेत्र में प्रभाकर वर्धन की बीमारी के समय जादुई क्रियाओं का बाणभट्ट द्वारा उल्लेख इस ओर संकेत करता है, जैसा देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि से अपने अंगों को जलाना, अपने शरीर का मांस तेज चाकू से काटना आदि। यहाँ साथ में शिव की भी उपासना करने का इसी प्रसंग में विवरण है। इससे लगता है कि शिव और शक्ति दोनों की जादुई क्रियाओं के प्रभाव क्षेत्र में साथ साथ अब आ चुकी थी। साथ ही तांत्रिक क्रियाएं भी ब्राह्मण प्रवृत्तियों में अब प्रविष्ट होने लगी थी। इस समय शाक्त पीठों की मान्यताएं स्थापित होने लगी थी। सीयूकी के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित भीमा देवी की काले कसौटी पत्थर की मूर्ति स्थित थी। वहां संपूर्ण भारत से लोग आकर 7 दिन उपवास रहकर देवी का साक्षात्कार करते थे। वहीं पास में महादेव का मंदिर था, जहां भस्म रमाए उपासक रहते थे। वेनसांग से ज्ञात होता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आगे गंगा के किनारे अयमुख नामक स्थान पर उसने देवी पूजक ठगों को वन प्रदेश में देखा था। पश्चिमी भारत में बाणभट्ट के कादंबरी के अनुसार देवी उपासना का एक केंद्र था, जहां संभवतः सप्तशती की रचना हुई थी। यह उज्जैनी रहा होगा, क्योंकि वहां चंद्रापीठ ने देवी दुर्गा के मंदिर के समीप रक्त ध्वज देखा था। तंत्र साहित्य में हमें शाक्त धर्म से संबंधित पूजा करने का विधान प्राप्त होता है। इस साहित्य में काम प्रधान रूप के विषय में वर्णन है कि इस संप्रदाय में देवी के काम प्रधान रूप की पूजा होती है। इस संप्रदाय में देवी के आनंद, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, ललिता आदि अनेक नाम वर्णित हैं। शाक्त साहित्य में त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान कल्प वृक्ष से घिरा हुआ, सुधा सिंधु में कदंब वृक्षों से घिरा हुआ एक मणिमंडप में स्वीकार किया गया है। उसी मणिमंडप में एक चिंतामणि गृह है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी ईशानी निवास करती है। शिव सदाशिव और महेशान उनके मंच पर्यंक और उपबरहण हैं, तथा ब्रह्मदेव, हरि, रुद्र और ईश्वर मंच के पैर हैं। वहां पर ऐसा भी आत्माएं हैं जो महेश्वर सार में उपनिबद्ध कार्यों को पूरा करती हैं। डॉक्टर भंडारकर का मत है कि यहाँ मंडल की मूर्तियों और पारिभाषिक शब्दों का प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। आनंद भैरव तथा महाभैरव 9 व्यूहों की आत्मा है, अथवा वे 9 व्यूहों से निर्मित हैं। ये 9 व्यूह हैं: काल व्यूह, कुल व्यूह, नाम व्यूह, ज्ञान व्यूह, चित्त व्यूह, अहंकार, चित्त, बुद्धि, महत और मन। इस संप्रदाय की यह मान्यता है कि आनंद भैरव अथवा महाभैरव का जब संयोग महाभैरवी के साथ होता है, तब सृष्टि की रचना होती है। सृष्टि में महाभैरवी और संहार में महाभैरव प्रधान है। इस संप्रदाय में महाभैरव ही देवी की आत्मा है। त्रिपुर सुंदरी संप्रदाय के दर्शन के अनुसार शिव और शक्ति तत्व आद्य तत्व हैं। शिव प्रकाश स्वरूप स्वीकार किए गए हैं, तथा वे विमर्श रूप अथवा स्फूर्ति रूप में शक्ति में प्रविष्ट होते हैं और फिर बिंदु का रूप धारण कर लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इसी प्रकार से शक्ति शिव में अनुप्रविष्ट होती है, उसके बाद बिंदु संबंधित होता है, फिर नाद स्त्री तत्व निर्गत होता है। बिंदु और नाद मिलकर निम्न बिंदु हो जाते हैं, जो स्त्री पुरुष शक्तियों का योग है, एक का और काम कहलाता है। जब श्वेत रक्त और मिश्र बिंदु मिलकर एक हो जाते हैं, तब काम कहलाते हैं। इस काम कला में 4 शक्तियां होती हैं: 1 मूल बिंदु ब्राह्मण का उत्पादन है, 2 नाद जिसमें समस्त वस्तुओं के नाम निहित हैं, 3 श्वेत बिंदु जो पुरुष का प्रतीक है, और 4 रक्त बिंदु जो स्त्री तत्व का प्रतीक है। शाक्त धर्म के एक ग्रंथ के अनुसार जब स्त्री तत्व प्रथम बार बिंदु में प्रविष्ट होता है, तब नाद के साथ हार्द कला नामक एक अन्य तत्व विवक्षित होता है। शाक्त धर्म के एक अन्य ग्रंथ के अनुसार उच्चतम देवी काम कला है और सूर्य संयुक्त बिंदु उसका मुख है। अग्नि और चक्र, रक्त और श्वेत बिंदु उसके उरोज हैं और हार्द कला उसकी योनि है, जिससे सृष्टि आरंभ होती है। इस प्रकार देवी सृष्टि करने वाली स्वीकार की गई है। वह देवी देवताओं में सर्वोच्च है और परा, ललिता, भट्टारिका तथा त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं। संस्कृत वर्णमाला का अ अक्षर शिव का प्रतीक है, ह अक्षर शक्ति का प्रतीक है। यह ह अर्ध कला कहलाता है। अतएव उपर्युक्त स्थितत्व अथवा योनि ह के आकार अर्धभाग हार्घ कला है। अर्ध कला का अथवा ह शिव के प्रतीक अ अक्षर से मिलकर काम कला अथवा त्रिपुर सुंदरी का प्रतीकात्मक रूप है, जो शिव और शक्ति के संयोग का फल है। वह अह कहलाती है और स्वयं अहम से मुक्त है। अतएव उसकी संपूर्ण सृष्टि अहंकार युक्त है। शाक्त धर्म के इस संप्रदाय के अनुयायियों का मत है कि सभी आत्माएं त्रिपुर सुंदरी की रूप मात्र हैं, और जब वे देवी चक्रों के साथ कामकला विद्या और ज्ञान का अभ्यास कर लेती हैं, तब वे त्रिपुर सुंदरी हो जाती हैं। अ और ह वर्णमाला के प्रथम और अंतिम अक्षर हैं एवं सभी अक्षर इनके साथ में ही में हैं। सृष्टि त्रिपुर सुंदरी का परिणाम है। इसमें स्त्री तत्व को प्रधानता है और देवी त्रिपुर सुंदरी का उच्च स्थान है। इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि जैसे त्रिपुर सुंदरी से सब अर्थ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अर्थ के व्यंजक सब शब्द भी त्रिपुर सुंदरी से उत्पन्न किए गए हैं। इसे परा नाम से भी संबोधित किया गया है। सृष्टि उसका ही परिणाम बताया गया है, विवर्त नहीं। इसे सांभव दर्शन कहा गया है। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने ठीक ही कहा है कि इस मत को मानने वाले की इच्छा त्रिपुर सुंदरी के साथ अभिन्नता की होती है। द एम्बिशन ऑफ एवरी पियर्स फॉलोवर ऑफ द सिस्टम इज टू बिकम आइडेंटिकल विथ त्रिपुर सुंदरी एंड वन ऑफ हिज रिलीजन एक्सरसाइज इज टू हैबिचुएट हिमसेल्फ to think that he is a woman. Thus, the followers of the Shakt school justify their application by the belief that God is a woman and it ought to be the aim of all to become a woman. Dr. R.G. Bhandarkar अर्थात इस मत को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रहती है कि मैं त्रिपुर सुंदरी के अभिन्न हो जाऊं। उसको इस बात का भी अभ्यास करना पड़ता है कि वह अपने को स्त्री समझे। शाक्तों का ऐसा विश्वास है कि ईश्वर स्त्री रूप है, अतएव सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि वे स्त्री हो जाएं। देवी को दीक्षा विधि द्वारा पूजित किया जा सकता है तथा देवी की प्राप्ति की जा सकती है। इन तीनों प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम प्रकार में यह कल्पना करना पड़ता है कि देवी महापद्मवन में शिव के अंक में बैठी हुई है। उनका विग्रह आनंदमय है, सबका कारण है और आत्मा से अभिन्न है। द्वितीय प्रकार में चक्र पूजा है, जो एक बाह्य पूजा है। तृतीय प्रकार में सच्चे दर्शन का अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करना है। चक्र पूजा का शाक्त धर्म के विभिन्न संप्रदायों में विशिष्ट स्थान है। इस पूजा में भुर्ज पत्र, रेशमी वस्त्र तथा स्वर्ण पत्र पर नौ योनियों के मंडल के मध्य में एक योनि का चित्र बनाकर उसकी आराधना की जाती है। पूरा मंडल श्री चक्र कहलाता है। इस प्रकार के पूजा की दृष्टि से शाक्तों के दो वर्ग सामने आते हैं, कौलिक समयीन। प्रथम में स्त्री रूप की पूजा करते हैं तथा दूसरे काल्पनिक रूप की। पूर्व कौल श्री चक्र की पूजा करते हैं, जबकि उत्तर कौल जीवित सुंदरी की योनि की आराधना करते हैं। मदिरा, मांस, मधु, मत्स्य आदि पूज्य पदार्थ कौल अपनी उपास्य देवी को अर्पित करते हैं और फिर स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं।